તારીખ 5/1/1987 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 39 મૂળ કેસેટમાં બીજા ગીતોનો અવાજ આવે છે.
યા અવધ સ્પષ્ટ અનન્ય નિયત અવિશેષ ઓર અસંયુક્ત એસે પાંચ ભાવ સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા કી અનુભૂતિ હૈ વ નિશ્ચય સે સમસ્ત ગુણ શાસન કી અનુભૂતિ હૈ ક્યોંકિ શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વયં આત્મા હી હૈ એસા અનુભવ કરને વાલા શુદ્ધ જ્ઞાન આત્મા હૈ તો યે જો આત્મા હૈ વો તો શુદ્ધ જ્ઞાન કા વિષયભૂત પદાર્થ હૈ और कार्य और कार्य पद्धति इसमें किस तरह की है इस प्रकार की इसको आचार्य महाराज ने बोलते हैं. क्योंकि ये तो समुचे रूप से बतला दिया कि ऐसे आत्मा के अनुभव अनुभूति करना है, लेकिन वो किस पद्धति से करोगे. तो कहते हैं कि अब यहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव से और विशेष नियाकार ज्ञान के तिरोभाव से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, ये शब्द प्रयोग यहाँ है, मूल विषय आता है आचार्य महाराज. जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है या तब ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है. अनुभव होता है ज्ञान का ज्ञान को. त्रिकाली है वो अवलंबन का विषय रहता है, आश्रय का विषय रहता है, इसलिए कहने में आता है कि उसका अनुभव हुआ है. असल में वो तो अवैधक स्वभावी है, वेदकता होवे उसका अनुभव हुए, लेकिन वो तो अवैधक स्वभावी है, इसलिए इसका अनुभव होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता. ये तो एक शैली है कथन की, एक भाषा प्रयोग है कि आत्मा का अनुभव किया जाता है, ध्रुव का अनुभव किया जाता है. दरअसल में अनुभव करने का ये वस्तु का अंग ही नहीं है, वो तो अवैधक अंग है. तो इसका अवलंबन लेना, इसका लक्ष्य करना, इसका आश्रय करना ऐसा कहने में आता है, लेकिन वो प्रक्रिया किस तरह से चालू होती है इसका यहाँ बिल्कुल रहस्य का उद्घाटन है. ये हो गया है रहस्य कि इसका वर्णन किया कि तू ऐसा आत्मा है, तो ऐसा एक पहचानने में तो आना चाहिए कि कैसा है मूल स्वरूप. ये पहचान का विषय है जो कि विचार के कक्षा में, विचार कोटि में ये पहचाना जाता है. अब पहचानने के बाद जब प्रयोजन अनुभूति से सिद्ध होता है, तो जिसको पहचाना हो उसका तो लक्ष्य हो गया और बातचीत लक्ष्य में रहेगी. पहचानने में ये भी पहचान होगी कि वहां वेदन नहीं है, वेदन वहां नहीं होता. अब जो परिणमन चल रहा है, जिस परिस्थिति में परिणमन गुजरता है, उस परिणमन में क्या है कि विशेष का आविर्भाव है. विशेष ज्ञान का आविर्भाव मैंने जो भी ज्ञान्तर पदार्थ है, अन्य ज्ञ रूप पदार्थ है, उसके आकार झलकते हैं और उस पर उसकी जो जहाँ तक मुख्यता है उसको उसको मुख्य करते हैं, उसको वेदते हैं उसको. ये ठंडा लगा, ये गर्म लगा, ये हुआ, ये हुआ, वहाँ तक सामान्य तिरुभूत है. पर सामान्य तिरुभूत है वहां तक अनुभूति नहीं है. भले ही लक्ष्य आत्मा का है, पहचानने पर तो लक्ष्य आत्मा का हुआ है, फिर भी अनुभूति क्यों नहीं है. सामान्य का आविर्भाव होते ही विशेष का तिरुभाव हो जाएगा और तभी ज्ञान प्रकट अनुभव में आएगा और तभी जिन शासन का ये ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है और आत्मानुभूति वही ज्ञानानुभूति है. वहाँ तो श्रुत ज्ञान को निम आत्मा कहेंगे. एक बहुत बढ़िया बात लिखा है चंद्राचार्य ने, कि ज्ञान तो आत्मा है लेकिन यहाँ श्रुत ज्ञान आत्मा है, ऐसे लेते हैं। मति श्रुत अवधेय मना पर्याय केवल, ये तो ज्ञान के भेद है। उसमें ज्ञान सो ज्ञान है, ये भेद है, उसको तो उसका तो कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ स्पष्ट शब्द पड़ा है श्रुत ज्ञान से स्वयं आत्मत्वात्, श्रुत ज्ञान खुद ही स्वयं आत्मा होने की वजह से, इसका अनुभव ही जिन शासन की अनुभूति है, जिन शासन से अनुभूति ही श्रुत ज्ञान से स्वयं आत्मत्वात। श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा होने से ये जिन शासन की, इसका अनुभव तो जिन शासन का अनुभव। हाँ, तो वेद को नहीं पकड़ना है, लेकिन ये श्रुत ज्ञान की भूमिका में ही सभी जीव को प्रथम अनुभव आता है। जहाँ अनुभव का प्रारंभ होता है वहाँ श्रुत ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान जब आत्माकार होता है, ज्ञानाकार होता है, स्वयाकार होता है, ज्ञान ज्ञान रूपी हो जाता है, तब इस श्रुत ज्ञान को समस्त जीव शासन की अनुभूति कहते हैं, उसको आत्मा नहीं, आत्मा की अनुभूति कहते हैं, उसको ही आत्मा कहते हैं, क्योंकि आत्माकार हुआ है। ये कार्य पद्धति में अपना जो चालू विषय है वो कहाँ से है, अब जो लेना है वो कैसे लेना है, दिशांतर का विषय चलता था। कि ज्ञान ज्ञेयाकार के प्रति झुका हुआ है, ये इनकी उल्टी दिशा है। ज्ञान तो ज्ञान में है, लेकिन ज्ञेयों के प्रति झुका हुआ ज्ञान, उसकी दिशा उल्टी है। और ज्ञान ज्ञान वेदन को, ज्ञान अपने वेदन को, स्वयं के वेदन को आविर्भूत कर ले, या स्वयं के वेदन को ग्रहण कर ले, ये स्वयं के वेदन को देखने वाला ज्ञान, उसका दिशा पलट हुई कि ज्ञान में ज्ञान वेदन है। इसका जो सही ख्याल है, ज्ञान से सही मैंने विकल्प से नहीं, ज्ञान से जिसका ख्याल है, ज्ञान में ज्ञान वेदन है, ज्ञान ज्ञान वेदन ज्ञान में ही है, ऐसा ज्ञान से जब पता चलता है तब वहाँ से दिशांतर हो जाता है। तो दिशांतर हो जाता है तो स्वसंवेदन रूप दशांतर हो जाता है। ये दिशांतर हुए बिना किसी को दशांतर हुए, ये कभी है। और दिशांतर हो गए उसका तो दशांतर होवे ही हो, ये एक वैज्ञानिक परिस्थिति है। ये विचारणा के काल में दिशांतर होने का प्रयास कैसे आता है, कैसे बन जाता है, जो अपने परिणमन में सभी उदय के काल में इस निज हित की मुख्यता से ही सब बात को देखता है, अपने परिणमन में मेरा हित और अहित का सवाल कौन है, मेरा हित कितना है इसमें, मेरा अहित कितना है, ये बात देखने का चालू हो गया हर उदय के काल में, उसको ये दिशांतर होने का मौका आता है। ज्ञान ज्ञान वेदक को समझने लगता है। बहुत संक्षेप में दीपचंद जी ने ये बात किया कि पर प्रवेश भाव से जीव का स्वसंवेदन रुक गया है, ऐसा कहा। तो पर प्रवेश भाव का मतलब क्या है, पर वेदक, पर का वेदन हो ही नहीं सकता है फिर भी अध्यासित रूप से
कर रहा है जी,
ये इनका स्वयं का स्वसंवेदन को यही चीज रोकती है। तो विचार से भिन्नता करने में तो विकल्प मात्र भिन्नता का रहता है। वेदन के ज्ञान के वेदन को पकड़ते हैं तो ये सही भिन्नता है। वेदन से भिन्नता लेना चाहिए। अब इन दिनों में चर्चा चल रही है वहाँ भावनगर में, तो ये बात किया है पिछले दिनों में, ये बात चली है अपनी कि भेद ज्ञान में वेदकता, व्यापकता, प्रत्यक्षता और शुद्धता एक साथ है जब भेद ज्ञान हो जाता है तब। अब भेद ज्ञान का प्रयास चलता है वहाँ, ये जहाँ भी जैसा उदय हो वहाँ इसमें से किसी न किसी चार में से किसी न किसी फैक्टर को अप्लाई करना पड़ता है। कि जैसे पर पदार्थ का प्रतिबिंब ही होता है, जैसे ये सब नारियल के पेड़ दिखते हैं चक्षु, तो उसमें कोई प्रयोजन तो हमारा है नहीं, कोई प्रयोजन नहीं होने पर भी ये ज्ञाय दोष मिथ्या तो व्यवस्था में ज्ञान कि जैसे यहाँ से ज्ञान होता हो, किस प्रकार का ज्ञान एक्शन कर लो, उसमें इष्टनिष्ठ नहीं कर रहे हैं कि ये पेड़ अच्छा है या अच्छा नहीं है, ये रंग हरा अच्छा है या पीला अच्छा है, ये कोई विचार नहीं है उसमें। सिर्फ सामान्य तौर से वो प्रतिबिंब इसका आता है, कोई विचार नहीं है इसके पीछे राग क्या है, द्वेष का या इष्ट का या अनिष्ट का। फिर भी वहाँ दोष कौन सा है? इससे ज्ञान होता है ऐसा है,
ये है तो दिखता है,
है तो दिखता है, तो इससे ज्ञान होगा। तो दरअसल में यहाँ की शुद्धता से ये प्रतिबिंब हुआ है। तो ज्ञान की स्वच्छता या शुद्धता पकड़ने में आते ही इसकी भिन्नता हो जाती है, वरना इसकी भिन्नता नहीं होती। यहाँ की स्वच्छता को लक्षणा ले ले रहे बात खत्म। अगर यहाँ की स्वच्छता ध्यान में नहीं रही तो यहाँ से ज्ञान होगा, और यहाँ से ज्ञान नहीं ज्ञान शंकर दोष होते ही फिर आगे बढ़कर फिर इष्टनिष्ठ में भाव धाव का दोष भी आगे होने वाला है ही। इस वक्त नहीं हुआ तो आगे जाकर एक शुद्धता का ये मुद्दा है। दूसरा जैसे वेदना आदि है, तो वेदना जब ज्ञान में झलकती है तो शुद्धता के साथ साथ वेदकता को भी पकड़ो। ज्ञान में वेदकता किसकी है, ज्ञान की है या साता-साता की? तो ज्ञान में ज्ञान ज्ञान की वेदकता को पकड़ते हैं तो ये भी नहीं जाता, क्योंकि वेदन का वेदन के सामने वेदन ले लिया, शरीर वेदन ये तो अध्यासित वेदन है, इसके सामने ज्ञान का भिन्नता हो, वरना भिन्नता होने का कोई कोई स्कोप नहीं है, कोई चांस नहीं है। तीसरा जैसे ये आवाज है, ये रिकॉर्ड चल रही है, संगीत चल रहा है, लेकिन ज्ञान की व्यापकता कहाँ है? शुद्धता है तो इसका प्रतिबिंब आता है कि आवाज कर्कश है या मीठा है या तीना है या ऐसा है जैसा है वैसा है, लेकिन व्यापकता मेरे ज्ञान के ज्ञान में है, मैं यहाँ तक व्यापता नहीं है, मेरे में व्यापता है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसकी कि ये ऐसा चलो या वैसा चलो, चलो या बंद रहो, मुझे कोई सवाल नहीं करो, मेरी व्यापकता नहीं है। तो अपनी व्यापकता को पकड़ते ही फैलेंगे। और प्रत्यक्षता तो एक बहुत जबरदस्त चीज है कि प्रत्यक्ष में ऐसा ही हूँ कि एक प्रसाद को उछालता है, जैसा हूँ मेरे स्वरूप वैसा ही प्रत्यक्ष तौर से मैं ऐसा हूँ। तो क्या तो चौदह वाला लिया, जैसे सामने मकान दिखता है, पेड़ दिखता है, वैसे प्रत्यक्ष जिसको आत्मा दिखता है मैं ऐसा ही हूँ, उसका तो प्रसाद उछलता है। ये भेदियाँ में एक साथ चार फैक्टर काम कर रहे हैं, और जिसको वेदियान में जो सफल हो गया वो, और जिसको वेदियान का प्रैक्टिस होता है तो विभिन्न प्रकार के उदय में वो अलग अलग फैक्टर को इस्तेमाल करते प्रैक्टिस कर लेता है।
लक्ष्य में लेके करता है वो, ये चारों फैक्टर को लक्ष्य में लेके करता है कि सिर्फ ज्ञान मात्र के भाव से?
ज्ञान मात्र में चार आ जाते हैं, ज्ञान मात्र करके में तो चार आ जाते हैं अभेद रूप से। लेकिन अभेदता अभेदता को साधी नहीं, जब तक अभेदता साधित हो गई तो एक ज्ञान मात्र में चारों आ गया, और अभेदता की सिद्धि नहीं हुई जब तक, तब तक उसको साध्य करने के लिए तो एक याद एक से एक के साथ दो या एक के साथ तीन वैसे है।
ख्याल में लेके करता है उसे?
नहीं, बराबर पकड़ करके करता है ख्याल में लेके।
ज्ञान अवस्था में तो सामान्य विशेष का भेद नहीं करता है ज्ञान में, ऐसे सामान्य विशेष दोनों ही है हर समय में, भेद नहीं है कि
तो इसलिए भेद नहीं करता है कि विशेष पर वो पूरा का पूरा
आसक्त में
मुक्त लुप्त हो गया है।
पर ये जो अभ्यास करता है फिर
15 गाथा में तो ये बोला अमृत चंद्राचार्य देव ने कि नियाकार को आविर्भूत करने वाला अर्थात निलुब्ध जीव, उसका अर्थ कर दिया है, अर्थ गठन कर दिया है कि जो जीव नियाकार को आविर्भूत करता है वही निलुब्ध है। मतलब निलुब्धता पैदा कहाँ से हुई है, पर विषय की लुब्धता क्यों आई कि ज्ञाकार मुख्य हो गया पितर में, इसलिए अगर ज्ञानाकार मुख्य होता सामान्य ज्ञान मुख्य होता ये लुप्तता हो ही नहीं सकती। हाँ, ज्ञाकार होगा, उसको तो मिटा नहीं सकता है क्योंकि इतनी स्वच्छता का कारण से है, इसके कारण से नहीं है, ज्ञेय के कारण से नहीं है, पर स्वच्छता तो स्वभावभूत होने से उसको निकालने का सवाल पैदा ही नहीं होता।
ये सामान्य में सामान्य का जब आविर्भाव हुआ तो विशेष में भी कोई फेरफार होता है क्या, कि जैसे पर गए तो पर रूप से भाषित होता है?
विशेष ज्ञाकार गौण हो जाते हैं, कोई भी गे तो इसके स्वकाल के अनुसार ज्ञान ज्ञाकार होगा।
ये वेदकता वगैरह जो भी है ये तो विशेष ज्ञान का
ज्ञान में जो पर गे का आकार उठेगा वो तो उसी स्वकाल और क्रम के हिसाब से होगा, लेकिन खुद उसको गौण कर देगा।
तो ये जो वेदन करता है ये तो विशेष ज्ञान का में पता लगता है, ये तो पर्याय में होता है
ना?
ये वेदन होता है ये तो पर्याय का वेदन करता है उस समय में, वो तो विशेष
वेदन तो पर्याय अंग का ही होगा, क्योंकि वेदन करना उसका ही जुम्मे है,
सारे लक्ष्य नहीं है,
वेदन करना ये पर्याय के जुम्मे कार्य रहा है तो वही करेगा, इसमें क्या आपत्ति है? किस चीज को मुख्यता देता है इस पर सब आधारित। जब एक ही जगह ज्ञान पर्याय में ज्ञान विशेष भी है, ज्ञान सामान्य भी है, और ज्ञान स्वभाव भी है, तो स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो सर्वत्र है, ज्ञान विशेष में शुद्धता स्वभाव है, ज्ञान सामान्य में निर्विकल्प ज्ञान वेदन स्वभाव, ज्ञान वेदन ऐसा स्वभाव है। तो सामान्य और विशेष दोनों में से स्वभाव को ही ग्रहण करें, यही स्वभाव का अवलंबन है। तो एक इस प्रकार के भेद ज्ञान के कार्य पद्धति में दिशा का मोड़, दिशांतर होना, ये काम पहला सा होता है, दिशा बदलते फिर दिशा बदल जाती है।
सर ये जरा कंफ्यूजन हो गया मेरे को, एक चार जो पढ़ के आपने बोले मैंने ये भेद ज्ञान के जैसे ये फोर एस्पेक्ट जो आपने बताए, तो ये जब इसको जब प्रयोग में लाते हैं तो जिस जिस समय में जिस हिसाब से भाव, मैंने जैसे आपने बोला वेदकता का जो भाव है वो, तो जैसे कि अभी मिथ्यात्व की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में जैसे वेदकता का जो भाव है, तो जैसे कोई तीव्र उदय हो तो पता चलता है कि उसके समांतर खड़ा करते हैं। तो मैंने इसमें हर समय में ये चारों पहलू को लक्ष्य में लेके वेद ज्ञान करना है कि इसमें व्यापकता कितना है, इसमें शुद्धता कितना है, उसका तपास करना है,
तपास करना
है इंडिविजुअली एक एक करके।
हाँ, अगर अगर एक साथ चारों नहीं आता है तो इंडिविजुअल प्रयोग में, अगर प्रयोग में चार आ जाता है तो बहुत अच्छी बढ़िया बात है, लेकिन संभव है कि नहीं आवे तो एक एक को प्रयोग में जाओ, प्रयोग में एक एक को पकड़ो, दो तो आ ही जाएगा, क्योंकि स्वच्छता के बिना तो सामने वाली चीज का प्रतिबिंब नहीं आता। कभी स्वच्छता गौण रह जाती है, वेदकता मुख्य रहती है वेदकता के प्रयोग में, और व्यापकता के प्रयोग में भी स्वच्छता गौण हो जाती है, क्योंकि स्वच्छता इतनी सामान्य है कि बिना स्वच्छता तो परचीज का ज्ञाकर होना सवाल ही नहीं है। अब इसमें व्यापकता और वेदकता इसको देखें, इसका अवलोकन करें, तो जहाँ जैसा प्रयोग हो, जैसे वेदना हो तो वेदकता को मुख्य करें, ऐसे आवाज वगैरह की बात हो तो उसमें व्यापकता को, वेदना में भी व्यापकता को तो ले सकता है कि ज्ञान ज्ञान में व्यापक हुआ है, शरीर में व्यापक ही नहीं है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ सर है वहाँ ही ज्ञान है, जैसे सर दुखता है पेट में दुखता है तो जहाँ पेट है वहीं ज्ञान है, तो वहाँ क्षेत्र की अलगता व्यापकता लेना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन वेदकता से तो भिन्न हो ही सकता है। जितनी सूक्ष्मता आती है तो वहाँ भी व्यापकता के अलग कर सकता है।
ये तो पहली बार मालूम पड़ा कि वेद ज्ञान में एक से चार फैक्टर्स होते हैं,
एक पकड़ में
हिसाब से देखना पड़ता है, मैंने मालूम ही नहीं पाया,
जो तो थोड़ी चर्चा हमारे यहाँ चल रही है।
बहुत सुंदर पहलू है,
वेद ज्ञान का चर्चा चली थी, इसमें बात चली थी, चली हमारे प्रयोग वेद ज्ञान का इस तरह से बार बार प्रैक्टिस होने से प्रत्यक्ष ऐसा ही हूँ इसका जो बल आ गया है, एक पुरुषार्थ का कोई अपूर्व नया स्तर आ जा उपलब्ध हो जाए। नानाभ्यास थवा अर्थ है, सन्मुख थवा अर्थ है, नानाभ्यास थवा अर्थ है इतने सन्मुख थवा अर्थ है, इतने दिशांतर थवा अर्थ है, इस हेतु से ज्ञाननी व्यापकता स्वच्छता वेदकता ने प्रत्यक्षता द्वारा परथी ने राग थी भिन्न अने पोता थी अभिन्न ज्ञानमय आत्मा नो ज्ञानमय स्वरूप नो ज्ञानमय स्वयं कौन स्वयं नो निरंतर अभ्यास करवा योग्य छे। बस इतनी बात है, ये डेफिनेशन
ये तो मालूम ही नहीं था, डेफिनेशन ही नहीं मालूम था अभी तक।
और जगह तो शास्त्र का इतना अध्ययन ही नहीं है जितना हमारे मुख्य समाज में है, लेकिन इस ज्ञान के अध्ययन में स्वलक्षी ज्ञान का अध्ययन एकमात्र ही कारणभूत है स्वयं के हित में, और परलक्षी ज्ञान का अध्ययन किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। शायद ये किसी अवगुण का भी निमित्त बन सकता है, इस पर बहुत कम लोग क्योंकि एक बाह्य क्रिया ये भी होगी जी। क्या होता है कि रूटीन में जल्दी आ जाता है, तो शास्त्र अध्ययन करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, ये भी एक रूटीन सी बन जाती है, और वो भी परलक्ष्य ज्ञान से ये प्रवृत्ति यंत्रवत मैकेनिकल चालू रहती है। स्वलक्ष्य ज्ञान से काम होता है, इस बात पर हमारे समाज में बहुत कम लोगों का ध्यान है। दूसरों की तो अपेक्षा ही क्या रखे।
सब्जेक्ट टू कंडीशन है,
आत्मलक्षी विचार प्रारंभ से अगर ले रहे इस बात को, तो आत्मलक्षी विचार की स्थिति में ही प्रतीति का अवसर है, वरना हां भरे फिर भी अंदर में प्रतीति नहीं हो रही। हाँ तो न्याय से, न्याय को पकड़ करके हाँ करता है, तो ये न्याय उचित है, इस बात को हम सम्मत करते हैं। फिर भी प्रतीति उनकी बुद्धि पड़ी है, उस प्रतीति को सलेटने का वहाँ ताकत नहीं आती है, हाँ भरने पर भी। तो ये स्वरूप लक्षी आत्मलक्षी विचारधारा में ही, मैंने निज हित लक्षी विचारधारा में ही प्रतीति का साथ मिल सकता है, वरना प्रतीति नहीं बदलती। और ज्ञान को जब तक प्रतीति का साथ नहीं मिलता है, कार्य सिद्धि नहीं मिलता है। प्रतीति उल्टी चलती है, ज्ञान उल्टा चलता है, दोनों का मेल नहीं है, ज्ञान का कोई बल नहीं चलेगा। ज्ञान निर्बल है उस स्थिति में, और निर्बल होकर डिटोरिएट होकर के खत्म हो जाएगा ये ज्ञान। और प्रतीति मिलते ही जैसे ज्ञान में कोई नया प्राण आया है, ऐसा बल पैदा होगा। हम प्रकाश में इस पद्धति से बात बहुत चली है, दीपचंद जी की इसी पद्धति से ज्यादा से। पॉइंट लिए हैं, स्वलक्षी ज्ञान प्रतीति नु उत्पादक थाय छे, कंपैरिजन कर से बता पॉइंट नी अंदर। पर जारे परलक्षी ज्ञान अनादि विपरीत श्रद्धा ने फेरवा समर्थ थतो नथी, अनादि जे विपरीत श्रद्धा छे एने पलटवा माटे परलक्षी ज्ञान बेकार जाय छे। केटलो पण शास्त्र स्वाध्याय करे छे, द्रवलिंगी नो 11મ 9 પૂર્વ નો સ્વાધ્યાય પર લક્ષી છે, અને બહુ જ ઓછો સમજનાર જીવ, ઉઘાડવાળો, ઓછામાં ઓછો ઉઘાડવાળો જીવ સ્વલક્ષી સમજણમાં આવે છે, ભલે સ્વાધ્યાય ઓછો હોય પણ સ્વલક્ષી સમજણનો પ્રકાર છે, શ્રદ્ધા પણ स्वलक्षी ज्ञान स्वभाव ने साधे छे अथवा गुण ने साधे छे, जारे परलक्षी ज्ञान दोष ने साधे छे अथवा अवगुण ने साधे छे। सामे सामे स्वलक्षी ज्ञान अंतरना ऊंडाण में सूक्ष्म थईने जाए छे, एनो बीजो आ पहलू छे, अलग अलग पहलू दिया है। કે સ્વલક્ષી જ્ઞાન આત્માને ભીતરમાં અંતરના ઉંડાણમાં સૂક્ષ્મ થઈને ઊંડું જાય છે, પરલક્ષી જ્ઞાન સ્થૂળપણે ઉપર ઉપર રહીને બહારનું બહાર પરવર્તે છે. માર્ગ સૂક્ષ્મ હૈ ઓર ખુદ સ્થૂલ હૈ, પ્રવેશ નહીં કરતા. સ્વલક્ષી જ્ઞાન સાથે પ્રતીતિ ફળતા સ્વરૂપ સ્થિરતાનું સામર્થ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, શુદ્ધોપયોગનું સામર્થ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, પ્રતીતનું બળ સાથે ફળતા. અને પરલક્ષી જ્ઞાન સ્વરૂપ સ્થિરતા માટે બિલકુલ અસમર્થ હોય, ગમે તેટલું પરલક્ષી જ્ઞાનમાં દ્રઢ કરે અને ઘૂંટે અને ઘટ કરે, સ્વરૂપ સ્થિરતા માટે અસમર્થ છે. આ એક વસ્તુ વિજ્ઞાન છે, જ્ઞાનનું આ વિજ્ઞાન છે. સમાગમ નથી તો એને અંદરની લાઈન કેમ પકડવી, લખે છે અને એ રીતે થોડું જે પડખા એના હાથમાં આવે છે તો એ પ્રકારનો અભ્યાસ આપણા મુખ્ય સમાજમાં નહીં હોવાથી સૂક્ષ્મ પકડે છે, લખે છે પણ એટલું સારું. એ જ્ઞાનનું વિજ્ઞાન છે, બહુ પડતો પણ એ જાય છે, આમ બાર સૂક્ષ્મમાં જાય છે, પર લક્ષ્યું છે ને એના બહાર આવી જાય છે. બાહ્ય જે દિશા છે એની ઘટતા પણ થઈ જાય, આવવાના હતા હમણાં પાછું થોડુંક ઠેકડે
સ્વલક્ષ કા મતલબ તો નિજ હિત કે લક્ષ્ય છે. વે જો કામ કરતે હૈ ઉસમે તો અપના હિત કા તો ભાવના તો હૈ અંદર મે,
ઉસકો સેલી કરના પડતા હૈ કે નહીં દેખના પડતા હૈ, ઉસકો એક્ઝામિન કરના પડતા હૈ બરાબર હૈ કે નહીં હૈ.
ઇતના પ્રયાસ ચલતા હૈ અંદર મે જૈસે જાનતે હૈ કોશિશ કરતે હૈ તો ભાવના તો યહી હૈ કે
ઇસ કા મતલબ યે હુઆ કે સ્વાધ્યાય કે કાળ મે પેડતે વખત તો ઉસસે લેકર યે વાત કો તપાસ કર લેના ચાહિએ. નહીં છે સારે ઉદય કે સબ પરિણામ મેં નિજ હિતલક્ષી દ્રષ્ટિકોણ સાથ હી સાથ રહેના ચાહિએ, એ સુવિચારના કા અંગ હૈ. સુવિચારના મેં એ બાત કી તો ચર્ચા કિયા,
એકાંત મેં બેઠતે હૈ, પ્રયાસ કરતે હૈ, ખોજતે હૈ, ભાવના ભી એસે હૈ કે નિશ્ચિત હો. ફિર કહાં
જો ફિર ઉદય મેં બાત છૂટ જાતી યા રહેતી હૈ. જૈસે ઉસ વક્ત ચર્ચા લિયા તો એક દ્રષ્ટાંત લિયા થા કે સભી સંસારી જીવ કો સારે સંસાર મેં કહીં ભી નહીં, ચાહે વો રશિયા વાલા હો યા અમેરિકા વાલા હો યા ભારત વાલા, કોઈ ભી મનુષ્ય હૈ, સબો કા હિત સંજોગ કે અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા મેં ઔર સંજોગ કે અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા કા એક હી માધ્યમ હૈ યે અર્થ, કરન્સી કોઈ ભી હો. તો યે દ્રષ્ટિકોણ છૂટતા હૈ કભી કિસી કા કોઈ ભી પ્રવૃત્તિ મેં? ये दृष्टिकोण किसी का नहीं छूटता है. तो इसमें क्या है कि प्रयोजन का दृष्टिकोण बिना छूटे ही प्रवृत्ति की वैविध्यता हो सकती है,
प्रवृत्ति की वैविध्यता हो सकती है लेकिन दृष्टिकोण की वैविध्यता नहीं है, वो तो एक रूपी हमेशा सदैव रहता है। तो यहाँ उदय की विविधता कितनी भी हो लेकिन निज हित का जो दृष्टिकोण है, दोष का जो दृष्टिकोण है, ये बात तो हमेशा साथ ही साथ रहनी चाहिए।
जाते कहीं मुलाकात होती है राजू भाई से,
क्या हुआ कि पर्यूषण के समावनी के दिन इनके माता जी पिता जी पता चल जाता कि ये है एक बढ़िया चीज, कहीं भी किसी भी प्रकार के अवगुण में या नुकसान में जाने में रेड लाइट मिल जाता है या सर्च लाइट मिल जाता है, दोनों बातें होती है एक ही साथ।
मंद होता
है, मंद होता है। भक्ति मार्ग में इस दोष को प्रवेश करने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए ज्ञानियों ने इसका सिलेक्शन कर लिया मोक्षों के लिए। और दूसरी जगह तो ज्ञान क्रिया दोनों मार्ग में तो ये अहम से बचना मुश्किल है, क्योंकि पर्याय दृष्टि तो है ही, पर्याय पर तो वजन है, पर्याय पर तो अस्तित्व रखे, और पर्याय में तो चलता है ज्ञान नहीं आता है, कषाय मंद होने जा रही है, तो अहम नहीं करेगा वो कैसे बचेगा, कैसे कौन सा बचने का है उसके पास, आधार कौन सा है। बहुत बहुत अनुभव का निचोड़ है इस चीज का। तो किसका समागम करने से सम्यक श्रद्धान आदि हो, आत्मवृद्धि हो, व किसकी संगति से मिथ्यात्म पुष्ट होगा, चार दुर्गति का भ्रमण नौकायों बना रहेगा तथा दुर्गति का कारण होगा, इन दोनों की गंभीर परीक्षा कर निर्णय करना योग्य है। थोड़ा सा भी ये दिखते हैं तो बोल देते हैं कि ये तो गड़बड़ा, क्लियर बोल देते हैं, तो संग नहीं करे तो अच्छा है हमारे में, तो संग करे तो उसको सुधरना है बस।
मुझे तो ये होता है यहाँ अपना जो अभिप्राय है जो समर्थक मिलता है वो ठीक संगति के लिए
अपने अनुकूल ही बात सुनना चाहता है।
देखो अपने अभिप्राय के प्रति बात सुनने का भाव ही नहीं रहता है, इच्छा ही नहीं, अभिप्राय ही नहीं। और जिसको निज हित की कामना है वो तो कोई प्रतिकूल कहने वाला मिलेगा तो बहुत बारीकाई से इस विषय में गहराई में चले जाएगा कि अच्छा मेरा अहित होने का मेरे ध्यान में बात नहीं आई और इनके ध्यान में आई तो बहुत गहराई में चले जाएगा। ये मध्यस्थ बुद्धि, इसको मध्यस्थ बुद्धि कहते हैं।
तीव्र आत्मार्थता बिना मध्यस्थ बुद्धि के नहीं होती, तीव्र आत्मार्थिक बना प्रकट हो तभी मध्यस्थ बुद्धि होती
है। ये निज हित की बुद्धि इसी का नाम ही आत्मार्थी है, बात बाकी तो बातें ही है। दरिद्री को एक रत्न मिले तो न्याल हो जाता है। अब सत्पुरुषों की कृपा से हमारे पास तो रत्नों का ढेर पड़ा है। अगर हमारा दारिद्र नहीं गया तो हमारे से कम नसीबी वाला भी दूसरा कौन है? ये तो एक ऐसी लाइन है कि एक रत्न भी सम्यक रूप से मिल गया दूसरे सब इनके कब्जे में आ गए। जरूरी नहीं है कि को गिने, सबकी उपलब्धि होगी लब्ध में। तब तो प्रतिदिन उठता है ये प्रतिबिंब आया सारा पिक्चर का, स्वच्छता इधर है तो आया। स्वच्छता के उघाड़ को नहीं देख करके स्वभाव को देखो, स्वच्छत्व है क्या है वो देखो।
तो ज्ञान सामान्य में वो है स्वच्छ,
ज्ञान ज्ञान विशेष सामान्य दोनों
में, ज्ञान विशेष तो पर्याय हुआ है। मैं एक अदर ज्ञान एस्पेक्ट हुआ,
ज्ञान सामान्य जो है उसमें कोई ज्ञाकार नहीं उठते, ज्ञाकार उठने उठने वाले को ज्ञान विशेष कहते हैं। ज्ञान सामान्य निर्विकल्प है लेकिन स्वच्छ इसलिए है कि उसमें कोई मिलान नहीं है, न राग का न कोई कर्म का कोई मिलान नहीं है, नो एडल्ट्रेशन, इसलिए वो शुद्ध है, स्वच्छ है, शुद्ध है। किसी भी प्रकार का वहां तो एडल्ट्रेशन हो ही नहीं सकता।
ज्ञान विशेष है वो भी स्वच्छ है पर वो दृष्टि अपनी उसको मलिन मलिन रूप से देखती है, मिथ्यात्व के वस्तु में
उसको स्वच्छत्व ग्रहण में नहीं है तो वो चीज ग्रहण में आ जाती है, ये मेरे में है,
वो मलिनता आ जाती है उसमें, उस हिसाब से
मलिनता पैदा हो जाती है,
मलिनता पैदा हो जाती है। दृष्टि का विषय हो गया है कि उसमें
उसमें अपने में ले लिया, अपने में नहीं होते हुए भी अपने में गिन लिया,
वो मलिनता है,
ये मलिनता है, ये अशुद्धत्व है, ये ज्ञान का ही अज्ञानत्व है। अब ऐसा करो प्रशांत जी, प्रयोग करते जाओ और फिर इसकी चर्चा करो, मजा रहेगा, अच्छा रहेगा। ये अभी तो चालू है, प्रयोग करते जाओ, कोई दिक्कत हो तो इसकी भी चर्चा करेंगे, सफलता हो तो इसकी भी चर्चा करेंगे, दोनों ओर की चर्चा करेंगे। इससे ज्यादा सब्जेक्ट विल बी एनलाइटन, ये तो विषय ही कोई ऐसा गहरा है कि जितने गहराई में जाओ और जितने गहराई में जा करके उसको इसकी खोज करो, ऐसा ही उसमें माल मिलता है। बराबर, ये प्रश्न ही उत्तर को ले आता है, बस सब बात हमारे कोई विचार किया हुआ है, सोचा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए शास्त्र में ये पद्धति चली है कि कभी आचार्य खुद प्रश्न निकालते हैं और उसका उत्तर देते हैं। इसका संकेत है कि अगर इसका प्रश्न उठता है तो उसका जवाब आता है ठीक तरह से। एक दो सुन ली थी, वो 50 गाथा पर थी, उसके अलावा मैंने कोई एक दिन ये सुनने का कोई प्रैक्टिस नहीं किया। पढ़ता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है पढ़ता हूँ, जरूर लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, एक प्रकार का प्रैक्टिस।
ये कार्यकारी ज्यादा ये है सुनने से ज्यादा
नहीं। उसमें क्या है कि सुनने में एक क्षण पर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकते,
ठीक है,
कोई भी एक बात है चली जाएगी एक सेकंड में, दूसरे नहीं आएगी, तो चंचलता तो बनाए ही रखनी पड़ेगी। चंचलता होगा तभी ये सुनने का काम होगा। पढ़ने में तो किसी एक बात की गहराई में आप घंटों भर चले जाओ, ये चीज सामने रहेगी, हटने वाली नहीं है किताब में, तो इसकी गहराई में आप जाना घंटों भर, उस पर इसकी गहराई में, इसके थिंकिंग में जाओ, फिर इसको टच करो। एक ही बात का रस लेना है,
तो पढ़ना पढ़ना
अच्छा एक ही चीज का रख लिया।
इसमें तो ये मुख्य तो भावना ही है, ये मुख्यता है, इसी इसके बिना तो
भावना ही जीवन है और भावना ही प्राण है, भावना ही नींव है और भावना ही स्ट्रक्चर है। भावना तो बड़ी चीज है, बिना भावना तो जीवन शुष्क हो जाता है।
मैंने साथ में विचारना होनी चाहिए, स्वाध्याय तभी मैंने फलकारी
पढ़ना नहीं तो पढ़ने से ज्यादा तो चिंतन होना चाहिए। मैंने कम से कम 8 times more पढ़ो, इससे 8 गुना तो चिंतन करो, चिंतन तो ज्यादा। जिसकी पढ़ाई ज्यादा और चिंतन कम मिलने वाला नहीं, पढ़ाई में से भी
इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, मिल जाएगा तो
इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और कुछ दुर्गुण भी पैदा हो जाएगा बाद में। चिंतन तो ज्यादा होना चाहिए, 1 रुपये में दुआ नहीं पड़े हुए कोई सवाल नहीं। ये तो पैर पैर पर कदम कदम पर तो हो सकता है, कर सकता है। क्षणे क्षणे प्रसंगे प्रसंगे सत्संग फकरा मैं सूक्ष्मता थी पोताना दोष अवलोकन करवा, अवलोकन करीने परीक्षण करवा, ये बात तो क्षण क्षण में प्रसंग चिंतन पर अवलोकन प्रधानता वालों
वर्तमान के साथ कंपैरिजन
अवलोकन नहीं, जमा वधारे में वधारे प्रधानता सुविचार क्या प्रगटे सुविचारणा क्या प्रगटे निज ज्ञान। आत्मा अस्तित्व पणे पण छे अने ज्ञायक पणे पण छे, मुमुक्षु जीवे उपाड क्यांथी करवो? बता दीजिए हूँ ज्ञायक छु क्यांथी उपाड करो? हर जगह द्रवगुण पर्याय वस्तु व्यवस्था वस्तु अस्तित्व पर जोर आता है, જોર આપે એ ઠીક છે, પણ આ અધ્યાત્મના વિષયનું જોર નથી ને અધ્યાત્મનો વિષય ખટકે છે, વિપરીતતા છે।
એમ સાથે તો મારે થોડો વિચાર ભેદ થયેલો. એને એમ કહ્યું કે શ્રદ્ધાનો વિષય શું હતો કે અસ્તિત્વ ગ્રહણ કરવું. અભેદ અસ્તિત્વ સિવાય શ્રદ્ધાને કાંઈ બીજો વિષય નથી. અને અસ્તિત્વમાં તો અનંત ગુણ છે જ્ઞાનથી માંડીને, એટલે હે પણ આ અસ્તિત્વ પણ આ જોર દેના. ભેદ જ્ઞાન નહીં હોગા ઇસકા ક્યા યે ક્રોસ નિકાલા કૈસે. અસ્તિત્વ તો કર્મે ભી હૈ, પર આજ તક કર્મે કર રખા હૈ ભી હૈ રાજ મેં ઉપર, કૈસે જુદા કૈસે પાડના હૈ હૈ તો હો હી રહા હૈ. અબ કાઈ મેં પણે કરે કિસ ચીજ સે ઉસકા ભિન્નત્વ હોગા. જ્ઞાન કે અલાવા પૂરા તો સમજ નહીં હોગા. ये गड़बड़ी है.
क्रोस तो बहुत सुंदर है. क्रोस तो बहुत सुंदर है.
टू पॉइंट इसके पास उत्तर नहीं था, लेकिन मैं अपनी बात छोड़ नहीं सकता. तो कहेगा एक बात खोटी रीत से मुख्य हो जाती है, उसको छोड़ना नहीं होता आसानी से. उसमें भी कोई प्रेस्टीज वाला आदमी हो तो छोड़ ही नहीं सकता. प्रेस्टीज पॉइंट बढ़ा
देता. इस विषय में शास्त्र में तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, एकदम क्लियर डायरेक्शन है.
नहीं, एम्बिग्यूटी पैदा हो ऐसा प्रकरण मिलता है. जैसे समय साल की दूसरी गाथा लीजिए, तो वहाँ मतांतर का सवाल पैदा हुआ है. सांख्य मीमांसा की बात हाथ में ली है, तो वहाँ अनुभूति का अर्थ क्या है? द्रव्यगुण पर्याय अनुभूति का ये अर्थ कथन किया है. और प्रमुखतया अध्यात्म शास्त्र में अनुभूति का अर्थ स्वानुभव होता है, अनुभूति क्रिया, उसको अनुभूति कहते हैं. तो ऐसी बात आवे यहाँ से, तो हमारे हिम्मत भाई के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ से ही हुआ है. तो हमारा तो ये ध्यान ही नहीं था कि दूसरी गाथा में अनुभूति का ये अर्थ किया. तो उन्होंने यही अर्थ लगाया 17-18 में, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता है, इसका अस्तित्व पकड़ना हुआ, ज्ञान नहीं पकड़ना. तो ये बात हमारे सामने नहीं आई, अनुभूति का ही वो अर्थ क्या है. फिर हमने ये देख लिया कि ये तो मतार्थ वाली बात चल रही है. दूसरी गाथा है, यह जीव पदार्थ सदा ही परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद में द्रव की एकता रूप अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है. इस विशेषण से जीव की सत्ता को न मानने वाले नास्तिकवादियों का मत का खंडन हो गया. बात अस्तित्व के लिए कि जो जीव की सत्ता को ही नहीं मानता है उसके लिए बात किया. तथा पुरुष को मैंने जीव को अपरिणामी मानने वाले सांख्यवादियों का मत परिणमन स्वभाव कहने से खंडित हो गया. न्यायिक और वैशेषिक सत्ता को नीति ही मानते हैं और बौद्ध क्षणिक को ही मानते हैं. उनका निराकरण सत्ता को उत्पाद में द्रव रूप कहने से हो गया. यह ऐसा एक अनुभूति वाला बात लिया है. अनुभूति का
यह तो ये है कि स्टैब्लिश करना द्रव्य को, आत्म द्रव्य को स्टैब्लिश करने का मुख्य हेतु है. तो विधि का विषय तो इसमें है नहीं.
उन्होंने तो इसी को ही विधि समझ लिया है. तो जहाँ विधि का विषय चला है वहाँ उत्पाद ध्रुव को घटाते हैं. तो बोलो कि देखो अनुभूति का ये अर्थ क्या है कि नहीं. प्रारंभ में आचार्य महाराज ने यही अर्थ सब जगह लगा लेना.
तो फिर का नहीं
तो फिर मैंने ये कहा कि यहाँ मतार्थ की विवक्षा चलती है और वहाँ अध्यात्म की विवक्षा चलती है. शब्द दोनों जगह एक ही प्रयोग शब्द का है, लेकिन विवक्षा दोनों जगह अलग अलग है.
तो बहुत क्लियरली दिया हुआ है।
मुझे भी बताया था तो जयचंद जी ने ज्ञान का
बताया
था।
जयचंद जी ने लिया है, गुरुदेव ने भी लिया है प्रवचन, सुन लेना यहाँ तक मैं लिया फिर आग्रह हो जाता है तो मैं नहीं बदल सकता।
कितने बड़े बड़े पंडित, प्रकांड पंडित,
टॉप लेवल का पंडित बाबा। साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने कि ये जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं हूँ। देखो अनुभव शब्द लिया है अनुभूति की जगह, तो क्या लिया है कि पहले आत्मा को जाने, किस तरह जाने कि ये जानने वाला ज्ञायक मैं हूँ, ऐसा मैं अनुभव में आता हूँ। उत्पाद विद्रोह अनुभव का विषय, जानने वाला है सो मैं हूँ ऐसा अनुभव में आता है। उसके बाद इसकी प्रतीति रूप होती है, फिर बात तो प्रतीति की ले लिया, अनुभूति में हूँ वहाँ जानने वाला ऐसा लिया है ज्ञान की बात में, तो ये उसका ध्यान गया। अच्छा जयचंद जी ने ऐसा लिखा है क्या? खुद ही ने तो शास्त्र बनाया, जानते हैं कि जयचंद जी ने क्या लिखा। अभिप्राय पहले से ही वो है तो दूसरी बात सामने आती है, फिर भी समझ में नहीं आती है, ग्रहण नहीं होती। ये प्रश्न शायद घोघा से बीच में भी उसी वक्त किया था। ज्ञायक पड़े होंगे, अस्तित्व पड़े
बेंच के सामने चलता है,
घोघा से कई बार बीच में आया शायद उसी
वक्त में था उस वक्त।
ज्ञायक में अस्तित्व तो आई है, हाँ आई, वो बात उन्होंने बोला, बेंच ने मंजूर भी किया, ज्ञायक की उनकी बता रही थी तो बीच में बोला। ठीक है।